दोपहर का वक्त था। हवेली के बड़े हॉल में एक सुकून भरी शांति फैली हुई थी। खिड़कियों से आती धूप फर्श पर सुनहरे पैटर्न बना रही थी। रत्ना देवी और सुषमा देवी सोफे पर बैठी चाय पीते हुए पुरानी बातें कर रही थीं। तभी हॉल के कोने में रखा लैंडलाइन फोन बज उठा। ट्रिन ट्रिन। रत्ना देवी ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से शकुंतला की उत्साहित आवाज आई। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रत्ना देवी का चेहरा खिल उठा। अरे, क्या बात है? आपके नाती का रिश्ता पक्का हो गया है। विशाल की शादी तय हो गई है। एक पल के लिए रत्ना देवी खुशी से चुप रह गई। सच कह रही है तू? बिल्कुल सच। अभी अभी लड़की वालों की तरफ से हाँ हुई है। अगले हफ्ते रोका भी है। रत्ना देवी की आंखें चमक उठी। उन्होंने ढेरों शुभकामनाएं दी और कुछ देर बात करने के बाद फोन रख दिया। जैसे ही रिसीवर रखा, वो खुशी से सुषमा देवी की तरफ मुड़ी। दीदी, क्या हुआ? विशाल की शादी हो रही है। अभी शकुंतला ने खुशखबरी दी है, रिश्ता पक्का हो गया। सुषमा देवी भी खुश हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी यही सोच रही हूँ। देखते देखते बच्चे कितने बड़े हो गए। दोनों बहनों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उधर से श्यामली आती दिखाई दी। उसने दोनों को मुस्कुराते देखा तो पूछा, क्या बात है, दोनों इतनी खुश क्यों लग रही हैं? सुषमा देवी हंस पड़ी। अरे, तेरे विशाल की शादी तय हो गई है। सच? श्यामली के चेहरे पर भी खुशी आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, रत्ना देवी ने प्यार से कहा। हाँ बहू, अब जल्दी ही घर में शहनाइयाँ बजेंगी, श्यामली ने तुरंत कहा। तो मिठाई तो बनती है। बिल्कुल बनती है। कुछ ही देर में ये खबर पूरे घर में फैल गई। नौकरों तक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। घर का माहौल अचानक हल्का और खुशियों से भरा हुआ लगने लगा। उसी समय विश्वनाथ अपने ऑफिस वाले कमरे से बाहर आया। उसने सबको मुस्कुराते देखा तो भौहें सिकोड़ ली। क्या बात है? रत्ना देवी तुरंत बोली, विशाल की शादी तय हो गई है। विश्वनाथ के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। अच्छी बात है। शायद सुबह के बाद पहली बार उसके चेहरे पर कोई नरमी दिखाई दी थी। श्यामली ने अनायास ही उसकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे लंबे समय बाद उसने उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखी हो। हालांकि वो मुस्कान कुछ ही सेकंड रही, लेकिन श्यामली के लिए वही काफी थी। तभी सीढ़ियों से आर्यन भी नीचे आया। उसे खबर मिली तो उसने भी विशाल को फोन लगाकर बधाई दी। फोन पर विशाल की आवाज में अलग ही उत्साह था। भाई, अब तो शादी में सबसे ज्यादा नाच तुम्हें करना पड़ेगा। आर्यन हंस पड़ा। पहले लड़की को डरा मत देना। दोनों कुछ देर मजाक करते रहे। फोन कटने के बाद आर्यन भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। घर में लंबे समय बाद ऐसा मौका आया था जब सबके चेहरों पर एक जैसी खुशी थी। लेकिन इसी बीच मुख्य दरवाजे के बाहर एक कार आकर रुकी। नौकर ने जाकर दरवाजा खोला। कुछ ही क्षण बाद अंदर एक मध्यम उम्र का आदमी दाखिल हुआ। उसके हाथ में फाइल थी। वो सीधा विश्वनाथ की तरफ बढ़ा। नमस्ते सर। नमस्ते, आपसे जरूरी दस्तखत करवाने थे। विश्वनाथ उसे अपने ऑफिस वाले कमरे की तरफ ले गया। बाकी लोग फिर अपनी बातों में लग गए। लेकिन कुछ मिनट बाद ऑफिस वाले कमरे का दरवाजा खुला। विश्वनाथ बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर वही गंभीरता लौट आई थी। उसने एक नज़र पूरे हॉल पर डाली, फिर उसकी नज़र आर्यन पर ठहर गई। आर्यन जी, पापा, जरा मेरे कमरे में आओ। उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब कठोरता थी। आर्यन तुरंत उठ गया। दोनों ऊपर चले गए। श्यामली ने यह सब देखा। उसके मन में न जाने क्यों हल्की बेचैनी पैदा हो गई। उसे लगा जैसे विश्वनाथ के मन में कोई ऐसी बात चल रही है जो वो किसी से कह नहीं रहा। ऊपर कमरे में पहुंचते ही विश्वनाथ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा। आर्यन चुपचाप इंतजार करता रहा। फिर आखिर उसने पूछा, आपने बुलाया था? विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी थकान थी। विशाल की शादी में हमें पूरे परिवार के साथ जाना होगा। जी, और वहां बहुत से रिश्तेदार होंगे। हाँ, विश्वनाथ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं चाहता कि वहां कोई पुरानी बातें उठे। आर्यन समझ गया कि इशारा किस तरफ है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैं समझ रहा हूँ। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें पीछे छोड़ देना ही बेहतर होता है। ये सुनकर आर्यन के दिल में हल्की टीस उठी, लेकिन उसने सिर झुका दिया। मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखते रहे, जैसे वो सिर्फ उसके शब्द नहीं उसके दिल को भी पढ़ लेना चाहते हों। नीचे हॉल में इस बीच शादी की तैयारियों को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। कौन क्या पहनेगा, कौन कब जाएगा, किसे क्या उपहार देना है, हर तरफ उत्साह था। श्यामली भी सबके साथ बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा ऊपर ही अटका हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि विश्वनाथ और आर्यन के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो धीरे धीरे पूरे परिवार की खुशियों को प्रभावित कर सकता है, और यही बात उसे भीतर से परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों नीचे लौट आए। विश्वनाथ हमेशा की तरह शांत था। आर्यन भी सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्यामली की नजरें दोनों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ अनकहे सवाल मिले, और उन सवालों के बीच विशाल की शादी की खुशियां पूरे घर में फैलती जा रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाली ये शादी सिर्फ खुशियां ही नहीं, कुछ ऐसे लोगों को भी आमने सामने लाने वाली थी जिनके बीच की अधूरी कहानियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, और शायद यही शादी उन कहानियों का अगला अध्याय बनने वाली थी।